بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ناظرین آج 30 صفر فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم شہادت ہے، اس مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں میمو گیٹ اسکینڈل، حکومت اور عدلیہ کا تصادم۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، پاکستان میں بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق حکومت اور عدلیہ میں تصادم کی کیفیت پائی جاتی ہے، اگرچہ حکومت اس سے انکار کرتی ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی عدالت عظمیٰ میں حاضری کے بعد جو کیفیت تصادم کی پائی جاتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ کچھ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور عدلیہ میں تصادم بہرحال موجود ہے۔ دوسری طرف میمو گیٹ کا مسئلہ بھی برقرار ہے، حکومت اور فوج کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے باوجود یہ مسئلہ حکومت اور فوج کے درمیان کسی بھی وقت کشیدگی بڑھنے کا باعث ہو سکتا ہے، اور اسکینڈل کے ایک اہم کردار منصور اعجاز نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے، اس سلسلے میں بھی مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب، السلام علیکم۔
السلام علیکم مہدی صاحب۔
جی شاہ صاحب، پاکستان میں حکومت اور عدلیہ میں تصادم کی حکومت تردید کرتی ہے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تصادم کی کیفیت بہرحال موجود ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ نے مجھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بلایا ہے، پیپلز پارٹی میں دو سکول آف تھاٹ ہیں۔
جی،
ایک سکول آف تھاٹ وہ ہے کہ جنہوں نے عدلیہ کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں،
جی،
بے بہا جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اور آج میں اسی آزاد عدلیہ کے لیے ویل چیئر پر آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، اور ایک طرف وہ ہے جو پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد ایک چھاتا بردار کی شکل کے اندر پیپلز پارٹی پر کچھ حملہ آور ہوئے ہیں اور قبضہ ہوئے ہیں۔ ان کا مطمئن نظر صرف اتنا ہے کہ حکومت کا عدلیہ کے ساتھ تصادم کس طرح کروانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں پہلے دن سے اس لڑائی کے خلاف ہوں، اور میری پارٹی کے بہت سے اراکین جو ہے وہ اس لڑائی کے خلاف ہے، لیکن ہر آدمی ایمان کے کسی نہ کسی درجے پر قائم ہے، کوئی ایمان کے پہلے درجے پر قائم ہے اور کوئی زیر لب گفتگو کرتا ہے، لیکن ذی شعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کی عدلیہ کے ساتھ تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر ہماری پارٹی جو ہے وہ اس بات سے انکاری ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے تو ریکنسلیشن کی جو پالیسی وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے، اور ہم ہر طرف ریکنسلیشن کر رہے ہیں، اور ہمارا عدلیہ کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے، اور ہم ہر عدلیہ کے فیصلے سے کبھی بھی انحراف نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر بات کچھ اور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جس وقت کرپشن کے کیسز ہوں اور عدلیہ جو ہے جس وقت ان پر ایکشن لے رہی ہو، تو وہاں پر سرد موری کا جو رویہ اختیار کرنا اور ڈیلینگ ٹیکٹس اڈاپٹ کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں، لیکن ایک اپنا ذاتی موقف بھی رکھتا ہوں، اور اس موقف کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصادم ہے یہ کسی بھی صورت کے اندر اداروں کے مابین وہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ اسرار شاہ صاحب. اور ناظرین ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور ڈاکٹر علی جعفر زیدی صاحب. زیدی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
زیدی صاحب پاکستان میں عدلیہ اور حکومت کے تصادم کے تعلق سے اسرار شاہ صاحب کی گفتگو اگر آپ نے ملاحظہ فرمائی ہو تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی ان کی گفتگو میں دو تین جو پوائنٹس آئے ہیں سامنے وہ بہت اہم ہیں اور وہ وہاں کے حقائق کی ریفلیکشن کرتے ہیں.
جی
پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اندر جو دو رائے چلی آ رہی ہیں یہ تو بہت پہلے سے بات ہے, اور چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بنانے والوں میں میرا نام بھی ہے اور میں پیپلز پارٹی کا جو فرسٹ پولیٹیکل آرگن تھا ویکلی نصرت اس کا میں ایڈیٹر تھا اور حنیف رامے صاحب اس کے چیف ایڈیٹر تھے. تو اس تناظر میں یہ جو پیپلز پارٹی میں دو رائیں چلی آ رہی ہیں یہ تو جب سے چلی آ رہی ہیں, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی تھی وہ بینظیر صاحبہ نے بدل دی, اور جو بینظیر صاحبہ نے جو پیپلز پارٹی بنائی تھی وہ زرداری صاحب نے بدل دی. تو پیپلز پارٹی کا اپنا جو کریکٹر ہے وہ نہیں ہے جو 67 میں پارٹی بنی تھی, پھر بعد میں جو بینظیر صاحبہ نے بنائی تھی, اور اب جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ پیپلز پارٹی ہے. اچھا اب اس پیپلز پارٹی میں بالکل وہ چھاتا بردار موقع پرست ہمیشہ ہی گھستے رہے, اب تو چھاتا بردار نہیں بلکہ جرائم پیشہ افراد اس کے اندر, اور نہ صرف پیپلز پارٹی میں بلکہ ہماری پاکستان کی بہت سی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جرائم پیشہ افراد کی ہماج گاہیں بن چکی ہیں, اور ان سیاسی پارٹیوں کو سیاسی پارٹیاں کہنا بھی میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے. وہ یہ گروہ ہے, یہ ڈفرینٹ مختلف مفادات رکھنے والے افراد کے گروہ ہیں جو اقتدار کی رساکشی میں اس وقت لگے ہوئے ہیں, اور اس کے نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کبھی وہ کلیش ہوتا ہے عدلیہ میں اور حکومت میں, کبھی حکومت میں اور فوج میں, اور کبھی حکومت کے اپنے اندر اور ان کے ساتھ جو الائز ہیں جو بظاہر کہتے بھی ہیں کہ ہم مخالف ہیں لیکن اصل میں نہیں ہیں نواز شریف وغیرہ, تو یہ سب مل ملا کر یہ آپس میں ان کے جو حکمران طبقات کے تضادات کا کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے. ان کے جو تضادات ہیں وہ آپس میں تقسیم لوٹ مار کے تضادات ہیں, اور اس میں اب صورت یہاں آ چکی ہے کہ اپنے تمام جو اسکینڈلز ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں, عدالت میں وہ کیس بھی موجود ہے اور ایک کیس شروع ہو گیا ہے اسور خان کے حوالے سے, لیکن جس میمو کیس کے تعلق سے آپ نے بات شروع کی ہے, میمو کیس صرف کیس نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت سارے انٹرسٹ ہیں. امریکہ کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے, فوج کا اپنا انٹرسٹ ہے, اور عدلیہ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس پر یہ بوجھ آ پڑا ہے کہ اس ٹکراؤ کا وہ اونٹ کدھر بٹھائیں گے. میں نے ایک پروگرام میں غالباً آپ ہی کے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ فوج کے ذریعے جو سول حکومتیں تھیں ان کو کنٹرول کیا جاتا رہا, ایوب خان ہو, یحیٰ خان ہو, ضیاء الحق ہو, پرویز مشرف, یعنی فوج کے ذریعے سیاسی حکومتوں کا اکڑ پچھاڑ ہوتا تھا اور سیاسی پاکستان کی سیاست کو فوج کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا رہا. یہ اب کی بار پہلی بار ہوا ہے کہ سول حکومت کے ذریعے فوج کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سی آئی اے اپنے ہتھکنڈے بدلتا ہے, پینٹاگون کے اپنے ارادے اور طریقے بدلتے ہیں وقت کے ساتھ, اور آج امریکہ کے ساتھ فوج کا ٹکراؤ اس وجہ سے ڈیولپ ہوا، وہ وجہ 2 مئی کے بعد سب کے سامنے آئی ہے، اور یہ اصل میں ٹکراؤ ہے سی آئی اے اور ISI کا. آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے اس ٹکراؤ میں امریکن جو انٹرسٹ ہے وہ وہاں کی سول حکومت کو سامنے رکھ کر فوج کے ساتھ ایک اپنی کھینچا تانی اور اپنے مسلز شو کرنا چاہتا ہے. اسی حوالے سے وہ منصور اعجاز کا معاملہ ہے، یوسف رضا گیلانی کے پرائم منسٹر ہاؤس میں حسین حقانی صاحب کی ہاؤس اریسٹ ہے. تو یہ تو ہیں تفصیلات، لیکن اصل بات ہے کہ جو ٹکراؤ ہے وہ ہے ISI اور سی آئی اے کا. اس میں سول حکمران جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، اور وہ امریکہ کو وہ فری ہینڈ ملک میں دینا چاہتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے، جبکہ فوج اس طرح کا فری ہینڈ اگر دے گی تو فوج کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے. چنانچہ امریکہ کو وہ فری ہینڈ جو اس کو افغانستان میں ملا ہے، جو اس کو عراق میں ملا ہے، اس طرح کا فری ہینڈ اس کو پاکستان میں یہ حکومت اور اس کے چند افراد جو کہ اس وقت پوری طرح امریکہ کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، وہ امریکہ کو فری ہینڈ دینے کو تیار ہیں، جبکہ باقی ادارے اور وہاں پر جو بالخصوص فوج شاید اس بات کو کا تحمل یا اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. تو یہ ٹکراؤ ہے انٹرسٹ کا، اور اس ریجن میں جو استعمار ہے، جو مغربی جس کو ہم امپیریلزم، اب تو یہ ٹرمینالوجیز ختم ہو گئی، ہم چونکہ یوز ٹو ہیں اور ہم نے یہی اصطلاحات لکھیں اور سمجھائی تھیں لوگوں کو، لیکن عملاً آج بھی عالمی سامراج اس خطے میں اپنا کنٹرول حکومتوں کے ذریعے رکھنا چاہتا ہے، رکھ رہا ہے، اس کو فری ہینڈ وہ نہیں مل رہا. ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہو، بلیک واٹر کے حوالے سے معاملات ہوں، وہاں سے ڈرون حملے کا قصہ ہو، آپ کی وہاں سے چھامنیاں اور ایئرپورٹس یوز ہوتی ہوں، تو یہ سارے معاملات کے حوالے سے امریکہ آہستہ آہستہ گھستا چلا آ رہا تھا، جس کو ایک سٹیج پر آ کر فوج نے کہا کہ بس اس سے آگے ہم نہیں جانے دیں گے. اب اس میں ٹکراؤ ہے فوج اور ISI اور سی آئی اے کا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ امریکہ کے بالکل ساتھ ہے اور فوج اس کو ریسسٹ کر رہی ہے. تو اس تناظر میں بات کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں عدلیہ کیا رول پلے کرتی ہے اور کس طرف جاتی ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی.
جی، بہت بہت شکریہ زیدی صاحب. اور ناظرین، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار نذیر ناجی صاحب سے. نذیر ناجی صاحب، السلام علیکم.
جی، وعلیکم السلام.
نذیر ناجی صاحب، آپ نے علی جعفر زیدی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے؟
جی میں جی کچھ حصہ سنا.
جی، کیا کہیں گے آپ ان کی گفتگو کے بارے میں، ان کا جو تجزیہ ہے موجودہ صورتحال کے بارے میں؟
جی، تجزیہ درست ہے، لیکن وہ جو مفادات کا ٹکراؤ والی بات کر رہے ہیں، یہ
جی
مفادات کہاں رہ گئے ہیں، یہ تو خالی گھڑا ہے، مچھلیاں اس میں نہیں رہ گئیں. تو اس وقت تو سب کا ہے کہ اپنی اپنی بقا کے لیے
جی
اپنی اپنی راہیں جو ہیں یہ لوگ سوچ رہے ہیں، سارے جو جتنے فریق ہیں یہاں اسٹیک ہولڈر، جو نون ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے ہیڈڈ بائی آرمی، پیپلز پارٹی ہے جو مقامی جو محنت کش اور دوسرے چھوٹے طبقے ہیں ان کی نمائندہ، اور حکمرانوں کی نمائندہ جو سرمایہ دار ہیں اور جاگیردار ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہے، دوسرا جو ایک عمران خان کی شکل میں ابھر رہا ہے، اور ایک موجود ہے نواز شریف کی شکل میں. یہ سب اپنی اپنی، کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت جو آئسولیشن جو ہماری ہوئی ہوئی ہے، اور جو معاشی طور پہ ہمارے سامنے امکانات بہت ہی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مقامی سرمایہ دار بھی یہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو عارضی ہمیں جو ملے بلائے قرضے ہیں، جو پرانے قرضے کی قسطیں ہیں، وہ لے لے کے گزارا تو چل رہا ہے، لیکن سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں ہمارے پاس رہے گا کچھ نہیں، اور جب کچھ نہ رہے تو سب جو ہوتے ہیں یہ اسٹیک ہولڈر، کوئی بھی نہ حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ حکومت کو کنٹرول کرنے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے راستے پر نہ لگا دے. اور اب جو راستے جو مختلف یہاں دکھائی دے رہے ہیں مختلف قوتوں کو, پہلی بات یہ ہے جو علی جعفر صاحب کہہ رہے تھے کہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کا ٹکراؤ ہے. یہ ٹکراؤ نہیں ہوتا, ہاتھی اور بکری کا مقابلہ ٹکراؤ کا مقابلہ نہیں ہوتا. سی آئی اے نے انہیں ایک طرح سے رد کر دیا ہے, یعنی یوں کہیے کہ ان پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے جو پرانے ایلائی تھے ان کے, اور اب اس ٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہاں جتن ہو رہے ہیں. وہ جتن کیا کیا ہو رہے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم وہ چل رہا ہے کہ جی ہم نیا روڈ میپ بنائیں گے, ہم نیا ایجنڈا تیار کریں گے پاک امریکہ تعلقات کا. اصل میں وہ سارا اس کو پھسلانے کے, بہلانے کے اور گھیرنے کے طریقے ہیں, لیکن وہ گھیرے میں نہیں آ رہے ہیں امریکی, وہ اپنی طرف رکھ رہے ہیں. دوسری طرف یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں چین کی طرف کہ ہم چین کی مدد سے کوئی ریجنل قسم کا ڈھونڈے اپنے لیے راستہ, اس میں انڈیا آ جاتا ہے. اب انڈیا کے ساتھ اگر آپ نہیں کرتے تو کون سا ریجنل آپ کا الائنمنٹ ہو سکتا ہے جس میں آپ اقتصادی فائدے حاصل کر سکیں. یہ ہیں ان سب کے مخمصے جس میں یہ سارے پھنس گئے ہیں, اور ان میں سے کسی میں بھی لیڈرشپ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ امریکہ ہمیشہ امریکہ کی رہنمائی میں چلتی رہی, انہیں کی سرپرستی میں چلتی رہی, انہیں آزادانہ پالیسی بنانے کا تجربہ نہیں ہے. سیاستدان ہمارے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ جو کارکردگی کے مظاہرہ کر کے اپنی حکومتیں چلاتے رہے, ان میں بھی انڈیپینڈنٹ ڈسیزن لینے کا کوئی نہیں ہے. عدالتیں اس کام کے لیے عادی نہیں ہوتی, نہ تجربے کار ہیں. تو یہاں کے سارے حکمران طبقے, سارے اسٹیک ہولڈرز ایک اس کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں جو کرائسس آف انٹیلیجنس ہے, کرائسس آف دانش کا کرائسس ہے, بحران ہے دانش کا, جو انہیں راستہ نہیں دکھائی دے رہا. تو انہیں کچھ پتا نہیں کس طرف جائیں گے, اور ہمیں بھی کچھ پتا نہیں کس طرف یہ ہمیں لے کر جائیں گے. ان کے بارے میں پیش گوئی کرنا اسی طرح ہے جیسے آپ کسی گدھے کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے وہ یہ کر دے گا, اور آپ کچھ سوچیں گے وہ کچھ کر دے گا. ہم اس وقت ایسی صورتحال سے دو چار ہیں
جی. نذیر ناجی صاحب, اس بیچ میمو گیٹ اسکینڈل کا کیا کردار ہے اس صورتحال میں, اس کی کیا جگہ ہے؟
یہ جدید دور میں حماقت کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی جی. آنے والے طویل عرصے تک مثالیں دی جائیں گی. ایک لون پیپر جس کا اونر کوئی نہیں, جو جس پیپر کو ٹائپ کرنے والا کہتا ہے مجھ سے فلاں نے لکھوایا
جی.
جس کے نام لگایا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے لکھا بھی, اور جس کو بھیجا گیا وہ کہتا ہے میں نے اسے عمل نہیں کیا, اس کو ردی کی ٹوکری میں پہن دیا, اور اس پر مقدمے چل رہے ہیں. ہماری پوری اسٹیٹ اس پہ ہلی ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں کاروائیاں ہو رہی ہیں, ہمارے جو آرمی کے بڑے بڑے جنرل گواہیاں دے رہے ہیں, لیڈر اپوزیشن کے سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ کی کمیٹی بحث کر رہی ہے, اور وہ جو کہتا ہے میں نے سب کچھ کیا ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا. اس سے بڑا تماشا کیا ہوگا
جی. آج جو کاروائی ہوئی ہے عدالتی کمیشن میں, اس میں جو منظور اعجاز کے وکیل نے بیان دیا ہے کہ ان کے موکل نے آنے سے انکار کر دیا ہے, اس نے آنے سے انکار کیوں کر دیا؟
ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا
جی,
وہ ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا. یہ سارے جو آپس میں ڈرتے پھر رہے ہیں جس کے اس کے لیٹر کی ہے گواہی کی بنیاد پر, وہ نہ ان کی عدالت میں آ رہا ہے, نہ ان کے سامنے آ رہا ہے, نہ ان سے ملنے کو تیار ہے.
تو اس کے نہ آنے سے اس کیس پر کیا اثر پڑے گا؟
جب وہ میمو ختم ہو گیا تو میمو کمیشن کہا جائے گا
جی. ایک سوال ہم اور کرنا چاہیں گے آپ سے, اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت لے لیں گے. ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کو کہیں جانا ہے, یہ میمو گیٹ کے حوالے سے جی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے ناجی صاحب؟
مجھے ڈاکٹر کے جانا ہے
جی. میمو گیٹ کے تعلق سے عدالتی کمیشن تشکیل دیا گیا, ادھر پارلیمانی کمیٹی ہے جو اپنے طور پر تحقیق کر رہی ہے. یہ جو الگ الگ کاروائیاں ہو رہی ہیں, پارلیمنٹ اپنے طور پر اس کیس کو دیکھ رہی ہے, عدالتی کمیشن اپنے طور پر دیکھ رہا ہے, اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا یہ عدالت اور
یہ کیا ہے کہ
جی
جس 21 पर सारे कारा केस खड़ा किया गया है, जिसपे पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, जिसपे कमीशन बना है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में एक कमीशन मेमो कमीशन तश्कील दे दिया है
जी,
जिसके लिए वकील रखे गए हैं, जिसके लिए सारा गवाहियां ली गई हैं, जिसके लिए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे आईएएस चीफ ने हल्फिया बयान जारी किए हैं, जिसमें वजीर आजम और सेक्रेटरी दिफा के दरमियान झगड़ा हुआ, फौज और वजीर आजम के दरमियान तकरार हुई, वो तो चीज ही कहीं नहीं मिल रही किसी को, वो कागज भी नहीं मिल रहा, वो बंदा भी नहीं मिल रहा
जी। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर नाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का।
थैंक यू
जी। और चलते हैं इसरार शाह साहब की तरफ। शाह साहब
अस्सलाम वालेकुम जी।
जी जनाब, मेमो गेट स्कैंडल के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, मेमो गेट स्कैंडल पहले दिन से ही जिन दो शख्सियात के गिर्द घूम रहा था
जी,
उनकी जो वजह शोहरत है वो कोई अच्छी नहीं है
जी।
हुसैन अकानी साहब, जिनका स्टार्ट नवाज शरीफ से हुआ और उसके बाद वो कंसल्टेंट की हैसियत में पीपल्स पार्टी के अंदर आ गए और फिर वो पीपल्स पार्टी से, इन दोनों की जो रेपुटेशन है वो किसी भी अंदाज में एक टाउट और मुखबरों की तरह की है। और मुझे समझ नहीं आती कि अगर उसकी हाईटेक इंक्वायरी की जाए तो ये बात दुरुस्त है कि जो मंसूर एजाज कह रहा है उसको अगर इंक्वायरी करने दी जाए, लेकिन वो इंक्वायरी होगी नहीं, इसलिए इंक्वायरी नहीं होगी कि इसमें एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और इस नए पंडोरे बॉक्स में बहुत से रास्ते जो हैं वो कोई आईएसआई की तरफ निकलेंगे और कोई जो है क्वेश्चन जो है वो प्रेसिडेंसी की तरफ जाएंगे। तो इस तरह के माहौल के अंदर मैं समझता हूं कि मंसूर एजाज जो इस वक्त इनकार कर रहा है उसका रोल ख़त्म हो गया है, वो दुरुस्त इनकार कर रहा है और वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो आ जाए तो जो भी टेलीफोनिक कॉल्स होती हैं उसके रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, और जब रिकॉर्ड मौजूद होते हैं तो क्योंकि फ़ौज को तहफ़ुज़ात से उन ऑब्ज़र्वेशन के हवाले से जो पाकिस्तान की जो ख़ुद मुख्तारी के हवाले से थी, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से थी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ISI और जो आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी हैं हमें उनसे बिल्कुल इनकार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे आर्मी हेड हैं और वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसके पीछे CIA या अमेरिकन्स मूव कर रहे हों उनके इंटरेस्ट नहीं है कि वो उस शख्स को कभी भी यहाँ पर आने देगा। जिस वक्त वो आएगा तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा और मैं समझता हूँ कि आज के उसके इनकार के बाद ये चीज़ खुद जुडिशल कमीशन जो है वो ख़त्म कर देगा उसकी एब्सेंटी की सूरत में।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैदी साहब जनाब, ये मेमो गेट स्कैंडल ही अगर आप देखें तो ये इतने बड़े पाकिस्तान में जो कशीदा सूरत हाल है इसका बाइस बना है, हुकूमत में और फौज में तसादुम की कैफियत पैदा हो गई। और अगरचे गुज़श्ता दिनों सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि कशीदगी ख़त्म हो गई है, क्या वाकई हुकूमत और फौज के दरमियान जो नाराजगी और कशीदगी थी वो दूर हो गई है?
जी, ये बहुत से जो बयानात आते हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए आते हैं
जी।
कशीदगी जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये कशीदगी चलती जा रही है और कशीदगी है वहाँ पर किसके पास कितने ज़्यादा इख्तियारात हैं और कितने ज़्यादा इख्तियारात वो लेकर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ISI के जर्नैल को इंडिया भेजने को तैयार थे, जिसके लिए फौज ने दबाव डाला और उनका बयान फिर उन्होंने वापस लिया। और मुसलसल जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो आज कुछ बयान देते हैं, कल कुछ बयान देते हैं, फिर अपने बयान को वापस ले लेते हैं। बयान ही सदर साहब के जो बयान या मुलाकातें हैं उससे समझ लेना कि कशीदगी नहीं रही, ये मैं नहीं समझता कि कोई एक बेहतर इंडिकेटर है। इसी तरह जैसे अगर यूसुफ रज़ा आ गए सुप्रीम कोर्ट में, तो ये समझ लेना कि अब सुप्रीम कोर्ट और उनके दरमियान कोई, ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप किसी के घर चले जाएं और नाराज़गी ख़त्म हो गई और आपस में एक सोशल कॉन्टेक्ट की बात नहीं है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा, जैसे शाह साहब ने कहा है, ये एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है जिसके खुलने का ख़तरा है, और इसके रास्ते में बहुत ख़तरनाक जो वादियाँ हैं, घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, वो सारे के सारे जाते हैं इसके प्रेसिडेंट साहब की तरफ और आर्मी के अपने इंटरेस्ट की तरफ, और उससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनमें बहुत से लोग एक्सपोज होते हैं। चुनाचे इस मुश्किल रास्ते को इख्तियार करने की शक्ल शायद किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं थी, ना ही शायद ये चाहते होंगे। ये शोशा वहाँ से शुरू हुआ, अमेरिका से, और बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये दोनों हजरात, हुसैन हक्कानी और मंसूर एजाज, दोनों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बेईमान हैं, फ्रॉड हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, और हर वक्त इन्होंने क्राइम की जानिब अमल किया और उसको टकराव करवाने में ये माहिर हैं, अफराद का टकराव हो या अदारों का टकराव हो, और ये हमने माजी में देखा, इन्होंने कई बार किया, हुकूमत भी ख़त्म हुई पीपल्स पार्टी की। तो खैर, ये यानी इन दो अफराद का मामला वहाँ से शुरू होता है, इनके डांडे अमेरिका। अब मंसूर एजाज को कौन नहीं जानता कि इसके ताल्लुकात कहाँ कहाँ हैं, फॉक्स टीवी पर आना और CIA और इनकी मुलाकातें मंसूर एजाज करवाता रहा है, जरदारी साहब की भी, हुसैन हक्कानी से रबता उसी ने डेवलप किया था। तो ये सारी तफसीलात तो आ चुकी हैं, और ये सारा मामला शुरू हुआ है अमेरिका से। अमेरिका से मुराद है फिर उसके पीछे वहाँ के एजेंसीज भी हैं, पेंटागन भी है, और वो मंसूर एजाज कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, यानी उसके पीछे जो ताने बाने हैं वो उसके पीछे अदारे हैं। और यहाँ पर टकराव, मैं फिर कहूँगा ये टकराव है, वो हाथी हो या चिमटी हो, टकराव तो हो जाता है। तो ISI का और CIA का ये टकराव, उसमें अमेरिका अपना रास्ता बनाना चाहता है जिसका कि फ़ौज ने इनकार कर दिया है, और फ़ौज अब अपना रास्ता चीन से भी जोड़ रही है और अपने दूसरे रास्ते इख्तियार कर, यानी अपने दोस्त तलाश कर रही है, और वो भी प्रेशर के तौर पे कर रही है, क्योंकि असल जो हमारी आर्मी का सारे का सारा जो उसका उठान है वो अमेरिकन इक्विपमेंट पर है, अमेरिकन ट्रेनिंग्स पर है, अमेरिका की फाइनेंस पर है। तो ये तमाम लोग, फौज, हुकूमत अपने मसल एक दूसरे को दिखा रही है, अदलिया उसमें अपने तौर पे कहाँ जाएगी और किसके मसल्स वहाँ सामने कोई नतीजा निकाल सकेंगे, ये तो अभी ज़रा दो चार दिन के बाद ही पता चलेगी बात। लेकिन जो असल गवाह है वो अगर नहीं आता, तो फिर मामला अदालत के लिए भी या कमीशन के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, उसका कोई ऐसा रास्ता या ऐसा रुख इख्तियार करना जिसमें फौज पर वो बोझ डाल सके या सदर साहब पर बोझ डाल सके। चुनाचे ये टेस्ट होगा अदालत का भी, और अदालत बगैर उसके मंसूर एजाज की गवाही के आए बगैर कैसे इस मामले को चलाएगी, या इस जो ये तीन जजेस हैं, क्या ये बाहर जाकर मंसूर एजाज से बयान लेंगे, और अगर ये बयान लेते हैं तो फिर उससे अंदाज़ा होगा कि इसमें कौन सा मसल ज़्यादा ताकत दिखा चुका, क्योंकि बयान लेने का मतलब है कि फिर मंसूर एजाज की जो बयान है उसकी रोशनी में सदर साहब तक मामला जा सकता है और भी कहीं कहीं जा सकता है। तो देखें, ये ड्रामा अभी चलेगा, लगता है अभी एकदम ख़त्म नहीं होगा, और इस ड्रामे में क्या क्या किरदार, कौन कौन कैसे अपना रोल प्ले करता है, वो भी सामने एक्सपोज होगा। मगर कितना अनफॉर्चुनेट है कि मुल्क में गरीब लोग मर रहे हैं भूख से, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बीमारियां हैं, तालीम नहीं है, फ्रॉड है, करप्शन है, और मुल्क को और अवाम को किसी तरफ ले जाने की बजाय जो हुक्मरान और एस्टेब्लिशमेंट, वो पूरे के पूरे अवाम और पाकिस्तान दोनों के ख़िलाफ़ ये जितना भी ये झगड़े और ये मामला चलते हैं, तो मुल्क भी कमज़ोर होता है और अवाम तो बहरहाल पिसे हुए हैं, ना उनके पास खाने को है, ना कपड़ा है, ना रोटी है, ना मकान है, कुछ उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कभी ये 18वीं तरमीम आ जाती है, कभी जज की बहाली आ जाती है, तो अवाम एक तरफ हैं, हुक्मरान एक तरफ हैं, अवाम का हुक्मरान से कोई रابطہ नहीं, हुक्मरानों का अवाम से कोई रابطہ नहीं, मुल्क के पास पैसे नहीं हैं, और अंदर ये ड्रामेबाजी ऐसे, यानी कैन यू बिलीव इट के अमेरिका बरतानिया जैसे ममालिक जहाँ पर उनकी इक्तसादियात भी उनकी सियासत भी अपने जगह अपनी अपनी जगह मजबूत है, वहाँ पर भी इस तरह के स्कैंडल्स ये ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमारे यहाँ एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा शुरू ख़त्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है कि मुल्क और कौम के ये जो हुक्मरान हैं ये सारे स्कैंडल्स के इर्द गिर्द ही हैं, और वो कभी सरे गेट स्कैंडल है, कभी सरे महल है, कभी कुछ और है, कभी, तो ऐसे लगता है कि हुक्मरान दे आर फुल ऑफ स्कैंडल्स, और कौम का मुल्क का किसी को कुछ ना परवाह है, और ना ही नज़र आता है कि इनकी आइंदा कोई इरादे हैं कि अवाम की कुछ भलाई हो या पाकिस्तान की कुछ भलाई हो।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के मुमताज़ तजिया निगार और सीनियर सहाफ़ी सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
सज्जाद मीर साहब, मेमोगेट स्कैंडल में मंसूर एजाज ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, पहले उसने कुछ शरायत पेश की थी पाकिस्तान आने के लिए, और इसके बाद फिर उसने साफ इनकार कर दिया है, तो अब इस स्कैंडल में आपके ख्याल में सूरत हाल क्या बनेगी?
असल में ये सूरत हाल ये है कि मंसूर एजाज को डराया इतना गया है कि वो आ नहीं पा रहा, यानी ये कहना कि ECL की लिस्ट पे दिया जाएगा या किया जाएगा, और मेरे ख्याल में जब पूरी सिचुएशन वाजे होगी, अगर कहा जाए बड़े क्लियर तरीके से, जैसे कि कोर्ट ने आर्डर दिया है कमीशन ने कि उनकी आमद और क्याम और वापसी को यकीनी बनाया जाए, तो अगर इसमें कोई फूल प्रूफ इंतजाम, असल में किस्सा देखिए ना, इसको हुसैन हकानी को तो उन्होंने कस्टडी में रखा हुआ अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्रेसिडेंट हाउस में, और उसकी हिफाजत कर रहे हैं, वो कहते हैं बाहर निकला तो मुझे ISI उठा के ले जाएगी, ISI का नाम तो उनकी बीवी ले रही है वहां वाशिंगटन में बैठी हुई, ये कहते हैं मुझे मार दिया जाएगा जैसे सलमान तासीर को मार दिया गया था, उनको तो इतना खतरा है। और मंसूर एजाज के बारे में वजीरे हमारे जो दाखला है वो कहते हैं कि ECL में यानी मुल्क से बाहर जाने में जो पाबंदी है उस लिस्ट में उसका नाम डाल दिया जाएगा, हालांकि गैर मुल्कियों का नाम डाले नहीं जा सकते, नहीं किए जा सकते, लेकिन एक बयान डाल दिया कि वो क्या है, उसको सिक्योरिटी वही है जो हम देंगे, यानी कि उनको गोया वो भी अपनी तहवील में रखना चाहते हैं जैसे उन्होंने हुसैन हकानी को रखा है। अगर कोई उससे डर नहीं है तो उनको उनकी आमद से इतनी तशवीश क्यों होती है? दो बातें हैं जो शकूक पैदा करती हैं, एक तो कि मंसूर एजाज के आने के और मंसूर एजाज के बारे में जो इतना शोर मचा रहे हैं इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है, वो आना नहीं देना चाहते हैं, उसकी यहाँ गवाही नहीं देना चाहते, परेशान करने वाली सूरत हाल बनती है। और दूसरी बात जो अमरीकन कहते हैं कि जो लोग अमरीकन कानून से वाकिफ है या इंग्लिश कानून से वाकिफ है वो जानते हैं कि अगर अमरीका में कोई हुसैन हकानी मुकदमा कर दे मंसूर एजाज के खिलाफ और वो गलत हो तो उसके लिए वहां जीना मुश्किल हो जाएगा, चुनाचे ये दोनों बातें शक में डालती हैं कि मंसूर एजाज के पास यकीनन कुछ है। और ये बात दुरुस्त है जहरी साहब जैसे कह रहे थे कि वो कोई काबिल एतबार आदमी नहीं है, काबिल एतबार ना हुसैन हकानी है हुसैन अगानी से हमारे मेरे ताल्लुकात उसकी तालिब इल्मी के जमाने से हैं और मुझे अपना उस्ताद भी कहता रहा है, पता नहीं अब भी कहता है कि नहीं कहता है, क्योंकि मैं तो उस पर शर्मिंदा होकर उसका ऐलान करता रहता हूँ कि नहीं भाई ठीक है, वो इस तालिब इल्म के तौर पर मेरे साथ बहुत अटैच भी था और बहुत राबता भी रहा है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये वो एक स्पिन डॉक्टर समझता है उसको, और उसका टकराव भी एक स्पिन डॉक्टर से हो गया है, क्योंकि एजाज जो है मंसूर एजाज वो भी कुछ छोटे स्पिन डॉक्टर अपने आप को नहीं समझते, और इनके पीछे कोई वेब मास्टर भी है जो सारी कार्रवाई करता है कि अब ये करना है अब वो करना है, तमाम रियासती अदारों को एक तरह का आपस में उलझा दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि शक पड़ता है कि ये मेमो तो जेन्युइन है, ये सब मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं रहा। अब जो बात शक तलब है वो ये है कि क्या हुसैन अकानी ने खुद ही ये चला कर दी थी या किसी के कहने पे की थी, तो ये सारी चीजें जो शक डालती हैं वो करती हैं कि पीछे किसी का हाथ था, और उस पर यकीनी तौर पर वजीर आजम का हाथ नहीं लगता, और ये लगता है कि इस तरह के काम जो हमारा मजाज है हमारे सदर साहब का वो कर सकते हैं, कि थोड़ा सा एक प्रेशर बिल्ड करते हैं, वो उसको सियासत खेलते हैं, वो स्ट्रीट फाइटर है जिस तरह कहा जा सकता है, वो उस अंदाज से सियासत करते हैं, उन्होंने बहुत तिगड़ी का नाच नचाया है, बहुत से लोगों को खुश होते हैं, लेकिन अगर सियासतदान के साथ वो एक स्ट्रेटेजिस्ट भी होते हैं अच्छे और पाकिस्तान के माफ कीजिएगा पॉलिसी बनाने का भी कोई उनका मूड होता तो बहुत बेहतर होता। अदारे क्लैश में है, यानी एग्जेक्टिव का इसकी इंतजामिया की लड़ाई है इस वक्त, फौज के साथ भी है, अदलिया के साथ भी है, ऑपोजिशन के साथ तो होनी भी है, नून के साथ नहीं जबकि बाहर है उनके साथ भी है, अगर इतने अदारों से आपकी लड़ाई हो जाए तो कोई ना कोई मामला तो गड़बड़ होता ही है। अब सारा मसला यही है कि सेनेट के इलेक्शन गुजारें फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें, जनरल इलेक्शन, इलेक्शन तो 2012 में नहीं होंगे तो 2013 में आपको करने पड़ेंगे, एक साल का वक्फा है जी, एक साल का नहीं है, 10 महीने का है, 8 महीने का, 7 महीने का है, ये छोटा मोटा वक्फा है जो आपको इस तरह गुजारना है, लेकिन इस तरह आपकी रेपुटेशन क्या रहेगी और कितने बचेगी। इमरान खान अमर्ज कर रहा है बड़ी तेजी के साथ, नवाज शरीफ अपनी खोई हुई ताकत को हासिल कर रहे हैं, अगर कोई पार्टी लूज कर रही है तो पीपल्स पार्टी है ना जी, वरना अगर नवाज शरीफ भी कुछ उसी से ले जाता है, इमरान खान भी ले जाता है, दूसरी पार्टियां मिल जाती हैं करती है, एक मजबूत इतिहाद बन जाता है, तो पीपल्स पार्टी लूजर होगी, और सदर साहब इस तरह इस वक्त जिस ताकत के साथ अपनी पॉलिसियों को चला रहे हैं वो यकीनन परेशान कुन है। अदलिया इस वक्त जो पॉजिटिव बात हुई है, अदलिया इस वक्त स्ट्रांग है और वो डटकर बहुत सी चीजों को देख रही है और कर रही है, इसमें बहुत सा एक तासुर ये भी पैदा होता है कि अदलिया शायद मनमानी कर रही है और बाकी इदारों को डिक्टेट करना चाहती है, हो सकता है कि ऐसा तासुर गलत ना हो, लेकिन अदलिया का मसला ये है कि जब दूसरे इदारे काम ही ना कर रहे हो, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही हो, गुर्बत बढ़ रही हो, जहालत बढ़ रही हो, रोज की लोड शेडिंग जिसका पाकिस्तान में कोई तसव्वुर ही नहीं था आज से 6-7 साल पहले वो इतनी ज्यादा हो गई हो, मुशर्रफ के जमाने में है मामूली एक आध घंटे कहीं होती थी, अगर होती भी थी हम दुनिया में फख्र से कोई पूछता था कि आपके यहाँ के बिजली लोड, हम इस पे परेशान होते थे कि बिजली अचानक चली जाती है, क्यों जाती, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्यों ब्रेक डाउन होते हैं, महजब मुल्कों में तो नहीं होता, तो क्या करना पड़ेगा जी, कैसे करना पड़ेगा। अब ये हो गया है कि लोड शेडिंग मामूल बन गया है, इंडस्ट्री पे उसका असर पड़ने लगा है, बिजली महंगी, गैस महंगी, लोड शेडिंग ऊपर से, रेलवे तबाह हो रही है, पीआईए तबाह हो रही है, आपका कोई इदारा जो मजबूत अदारे थे रेलवे के जी, बड़े मजबूत अदारे थे, पीआईए ने इस खत्ते की बहुत सी एयरलाइंस को बनाया है, एमरेट की एयरलाइन इन्होंने बनाई है, एक नहीं जी एयर माल्टा इन्होंने बनाई है, दुनिया की बहुत सी एयरलाइने जो है ना पीआई ने खुद, यानी अब उसका हालत है कि उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, स्टील मिल आपका एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था उसको, तो इतनी सारी नेगेटिव इंडिकेटर हो तो हुकूमत की तो कोई बात नहीं सुनी जाती है, लोग कहते हैं कैसी डेमोक्रेसी है जिसने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, तो हुकूमत के पास आवाम के पास जाने के लिए कुछ है तो नहीं है, और वो बहुत सारा चीज का शोर मचा रही है कि जमहूरियत का भी इम्तहान है, फौज अदलिया इफेक्टिव, जैसे मैंने कहा फौज ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया है कि वो इंटरवीन नहीं करना चाहती, और ये एक अच्छा तरीका है जी, और यकीनी तौर पर इनका ख्याल है कि फौज इस वक्त कमजोर महसूस कर रही होगी, वो जंग में फंसी हुई है, अमरीका दबाव डाल रहा है, अमरीका के साथ भी उसको लड़ना पड़ रहा है, तो एक तरफ अमरीका है एक तरफ अगर हुकूमत की हो जाए तो ये बड़े अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि अमरीका भी इसमें अपना बहुत किरदार अदा कर रहा है, ये मीमो गेट जो है ये एक अमरीकी का ही दिया हुआ है ना तोहफा है, अगर वो तो ड्रामेबाज है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसके पास सबूत है ना जी ब्लैकबेरी के, वो यहाँ लोगों को गुमान है वो गलत नहीं है, और उसमें हुसैन अकानी ने कोई ऐसी बातें की है इसी तौर पर जिससे तासुर यही बनता है कि इसमें सिर्फ वही मुलव्वस नहीं है बल्कि शायद कुछ और भी मुलव्वस है, और इसलिए ये कहना कि मंसूर एजाज का कोई भाग रहा है, डर रहा है, वो जेन्युइन तौर पर समझता है कि इसको बहुत तंग करेंगे, परेशान करेंगे। अब देखिए उन्होंने कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा तो हम बाहर जाके कार्रवाई कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं, या उसको आने का आखिरी मौका भी देना चाहते हैं कहा जा रहा है। कोई पता नहीं कि वो अचानक आ भी जाए, ये भी एक ड्रामा हो सकता है। और कोई पता नहीं कि वाजे तौर पर कहा जाए कि फौज उसकी हिफाजत करेगी और लुक आफ्टर करेगी। देखिए अगर वो रहमान मलिक के पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरे सबूत ही ये गोल कर देते हैं, छीन लेते हैं, गायब कर देते हैं, मैं क्या करूंगा। अगर रहमान इन लोगों की तहवील में रहते हैं तो उसको शक है कि वो उस पर सख्ती भी कर सकते हैं। चलिए ऐलान कर देंगे जी ECL पर डाल दिया, अब हमको बाहर नहीं जाने देंगे, अमरीकी सफारतखाना उस पर इंटरवीन करता है या पाकिस्तानी। अब अमरीका सफारतखाना बिल्कुल उस पर गैर जानदार होकर एक तरफ हो गया है क्योंकि वो हुकूमत की मुखालफत नहीं करना चाहता। हम हुकूमत को यकीनी तौर पर इस वक्त एक एज है कि उनके साथ किसी हद तक जो है अमरीकी कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नाम तो वो जमहूरियत का ले रहे हैं लेकिन जमहूरियत का नाम नहीं है। उसके बावजूद भी अमरीकी जब एक मूड बनाते हैं और फौज दूसरा मूड बनाती है तो फौज कुछ कर गुजरती है। हम इस पे मुतमिन है पाकिस्तान में कि फौज इंटरवीर नहीं कर रही, इंटरफेयर नहीं कर रही और अदलिया आजादी से काम कर रही है। अपोजिशन भी ज्यादा विजिलेंट है, मीडिया बहुत वोकल है, मीडिया बहुत वोकल है, वो अपना काम दिखा रहा है। ये सारी जर्द तकसीम जो हो रही है ये कोई हुकूमत के हक में नहीं जाती थी। और अगर वो सच्चे हैं तो चाहिए कि उन्हें केस की इंक्वायरी को वेलकम करें। वो एबटाबाद कमीशन जो उन्होंने खुद मुकर्रर किया है तो उस पर फिक्रबाजी करते रहते हैं कि साहब अगर वीजे हमने दिए थे तो आप बताइए उसामा को वीजा किसने दिया था। वो सवाल पूछा था उन्होंने कहीं कि आपने कितने वीजे जारी किए, तो उसके जवाब में कहते हैं। तो वो किसी किस्म की इंक्वायरी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, यही समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है हम ही कर रहे हैं और हम ही सबसे दुरुस्त है और हम ही हैं जिनके पास कोई गलती नहीं है। बहरहाल ये एक खासा बहरान का मरहला है, गुजर जाएगा, एक दो महीना शायद मुश्किल होगा, फिर हम इलेक्शन की तरफ चल पड़ेंगे, शायद उससे पहले चल पड़े और हालात ज्यादा बेहतर हो जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। असरार शाह साहब, सज्जाद मीर साहब ने जो तस्वीर खींची है मुल्क में जो मुश्किलात और मसाइल हैं और जो हालात उन्होंने पेश किए हैं, तो ये हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं यानी पीपुल्स पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। इस सूरत में फिर आइंदा इलेक्शन में आपकी पार्टी की पोजीशन क्या होगी?
मैं समझता हूं कि मैं तो पहले दिन से ही पिछले 2 साल से 3 साल से पीट रहा हूं कि ये लोग, कुछ लोग जो इस वक्त जरदारी साहब के दरबारी हैं, वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को गड़ी खुदा बख्श में दफन कर दिया जाए। और मैं जिस तरीके से मीर साहब ने बताया है कि हक्कानी के बारे में, हक्कानी भी उन दरबारियों में एक शामिल है जो इस वक्त एक गौल का गौल है जो सदर साहब को खुश करने के चक्कर में है। मैं समझता हूँ कि इस चक्कर में हो सकता है कि उसने चालाकी की हो, क्योंकि इस वक्त चालाकी और अय्यारी ही इस वक्त बदकिस्मती से मेरी पार्टी के अंदर मायार बन चुका है। और अगर यही हालत रही तो हमें आने वाले कौमी इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा।
जी, पार्टी के अंदर भी आपने बताया कि दो ग्रुप हैं या तीन ग्रुप हैं, कुछ वो हैं जो इस पार्टी के वफादार हैं और पार्टी को उसकी असली हालत पर बाकी रखना चाहते हैं, और कुछ वो हैं जिनको आपने छापामारों से ताबीर किया है।
आप इस सिलसिले में इस वक्त ही ग्रुप है जो
जी
जो इस वक्त विराजमान है और वो छापा बरदार और छाता बरदार ग्रुप है, और बाकी बेचारे कारकुन जो है वर्करों का है वो इस वक्त डिप्रेस है, डिमोरलाइज हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और खैबर से लेकर कराची तक जितने वर्कर हैं वो इस वक्त डिसअपॉइंट हैं। तो दो किस्म की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकसीम हो चुकी है, एक वो पीपल्स पार्टी जो इक्तदार के अंदर बैठी है और एक वो पीपल्स पार्टी जो बतारी हाथ में दरख्वास्तें पकड़े हुए मुख्तलिफ जगहों पर धक्के खा रही है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया असरार शाह साहब। इसी के साथ हम डॉक्टर अली जाफर जैदी और नज़ीर नाजी और सज्जाद मीर साहिबान के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल पाकिस्तान के हालात क्या बनते हैं ये मुस्तकबिल में देखा जाएगा। और नाजरीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में फ़र्जंद रसूल हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम शहादत की मुनासिबत से ताज़ियत पेश करते हैं। इस वक्त मशहद मुक़दस में आपके रोज़े पर दसियों लाख ज़ायरीन और अज़ादारों का इज्तिमा है जो आपके यौम शहादत की मुनासिबत से आज़ादारी में मसरूफ़ है। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा।